हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। अमन आर्टिस्टिक के ऑफिस में था। उसने अपने आज का काम निपटा दिया था, इसलिए वो आंशी की दी हुई लिस्ट देख रहा था। इतना सामान खरीदूंगा तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ये पूरे दिन से घर पर है, खुद नहीं जा सकती थी क्या जो मुझे मैसेज कर दिया? अमन वहां से आंशी के लिए शॉपिंग करने के लिए जाने को हुआ, तभी उसके पास इमरजेंसी मीटिंग का नोटिफिकेशन आया। मीटिंग में जाना भी जरूरी है, लेकिन बिना सामान कहे गया तो मॉम और दादी को भी जवाब देना होगा। ऊपर से आंशी, वो लड़की मेरा दिमाग खराब करके रख देगी, अमन ने आंखें तरीर कर कहा। उसके बाद वो अपने केबिन से बाहर आया और बाकी का काम मिस्टर सिंह को समझाकर एजेंसी जाने के लिए निकल गया। वो एजेंसी पहुंचा तब तक मीटिंग शुरू हो चुकी थी। उसकी पूरी टीम मिस्टर तेज प्रकाश दत्त के साथ मीटिंग रूम में मौजूद थी। मीटिंग रूम की स्क्रीन पर उस हॉस्पिटल की फोटो थी जहां विधिक और उसके साथियों ने आगे बॉम्ब ब्लास्ट कराने की सोची थी। ये वही जगह है जिसे विधिक और उसके साथियों ने चुना है। 5 दिन बाद यहां इस हॉस्पिटल का फाउंडेशन डे मनाया जाएगा, इसलिए स्पेशल कैंप के तहत इलाज फ्री होगा। इसका प्रमोशन काफी दिनों से किया जा रहा है और बहुत से लोग इस हॉस्पिटल में फ्री सर्विस लेने के लिए पहुंचेंगे। ये हॉस्पिटल और यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी काफी फेमस है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री सर्विस का फायदा उठाना चाहेंगे, मिस्टर गुप्ता ने स्क्रीन की तरफ देखकर बताया। मैंने वहाँ की अथॉरिटी से बात की है, लावण्या ने आगे बताया। वो किसी भी हालत में इस दिन पर रखे गए प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं करेंगे और ना ही कैंसिल। ये हॉस्पिटल काफी पुराना है और उनकी ये परंपरा भी काफी टाइम से चली आ रही है। मैं डायरेक्टली उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट का नहीं बता सकती थी। क्यों ना हम पहले ही वहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दे ताकि वहाँ किसी को बॉम्ब प्लांट करने का मौका ही ना मिले, जस बोला। ये भी पॉसिबल नहीं है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और वहाँ की सिक्योरिटी भी वही लोग देखते हैं। ऐसे में वो हमारा इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें वहाँ सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए तो हमें उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताना पड़ेगा, लावण्या ने कहा। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे ऊपर सवाल खड़े होंगे, लोग पैनिक हो जाएंगे, अमन ने तुरंत लावण्या के सुझाव को नकार दिया। मिस्टर दत्त भी उससे सहमत थे। तो फिर हम कैसे काम करेंगे? हमें कुछ तो करना होगा, वरना उस दिन बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। आपने सुना ना उस दिन ने क्या कहा था? अगर विधिक इस बॉम्ब ब्लास्ट में कामयाब हो गया तो वो चंडीगढ़ के बाद दिल्ली पर हमला करेगा, मिस्टर गुप्ता परेशान स्वर में बोले। हमारा सारा ध्यान हॉस्पिटल की तरफ क्यों है? अचानक अमन बोला। वो प्लान का सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप रॉबिन और मेलिसा हैं जिन्हें इस प्लान को अंजाम देना है। वो दोनों ही नहीं रहेंगे तो ये प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। हमें कैसे भी करके उन्हें अरेस्ट करना होगा और उनसे सब पता लगाकर उन सब लोगों तक पहुंचना होगा जो इस प्लान को अंजाम देने वाले हैं। बॉम्ब बनाने वाली टीम से लेकर वहां बॉम्ब प्लांट करने वाली टीम तक सबको पकड़ना होगा। अमन का प्लान तो काफी अच्छा था, पर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। इतने कम टाइम में बिना किसी वजह के वो रॉबिन और मेलिसा को पकड़ भी नहीं सकते थे। रॉबिन और मेलिसा अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ये बात सिर्फ एजेंसी को ही पता है। बाकी दुनिया की नज़रों में वो आज भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज हैं। वो सोशल वेलफेयर के लिए एनजीओ चलाते हैं, डोनेशन देते हैं। ऐसे में उन्हें अरेस्ट करना आसान नहीं होगा, मिस्टर दत्त ने कहा। क्यों नहीं आसान होगा? आपने बताया था कि कोई ऐसा है जो रॉबिन को काफी अच्छे से जानता है। हमें उस इंसान को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकता है। मैं तो कहता हूँ हमें रॉबिन से पहले मेलिसा को टारगेट करना चाहिए। मैंने उसे देखा है, वो दिखने में कितनी भी चालाक हो या कितना भी दिमाग लगाती हो, पर सच ये है कि वो एक दिन से ज्यादा हमारा टॉर्चर नहीं झेल पाएगी, अमन बोला। ठीक है, फिर दो प्लान बनाते हैं। पहला प्लान अमन के हिसाब से, जिस पर काम करने के लिए हमारे पास 3 दिन का टाइम है। मैंने उस इंसान को मैसेज कर दिया है, यहाँ आना या ना आना उनका डिसीजन होगा। अगर 3 दिन में रॉबिन या मेलिसा में से कोई भी नहीं पकड़ा गया तो हम प्लान बी पर काम करेंगे। प्लान बी के हिसाब से हमें हॉस्पिटल में हो रहे फाउंडेशन सेरेमनी को रोकना होगा। मिस्टर दत्त ने पूरा प्लान बनाकर उन लोगों के सामने रख दिया। सब उनसे सहमत थे, लेकिन अचानक लावण्या ने कहा, और अगर हमारे प्लान ए और बी दोनों ही फेल हो गए तो? हम पॉसिबिलिटीज पर नहीं चल सकते सर, हमें तीसरा प्लान भी बनाना होगा। मिस्टर दत्त को उसकी बात सही लगी। वो कुछ पल के लिए रुके और फिर कहा, अगर दोनों प्लान काम नहीं किए तो ऐसी सिचुएशन में हमें आंशी को विधिक तक पहुंचाना होगा, सिर्फ वही है जो उसे रोक सकती है। मिस्टर दत्त के तीसरे प्लान के बारे में सुनकर जस और मिस्टर गुप्ता हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। अमन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन जस जल्दी से बोला, लेकिन सर ये गलत होगा, हम अच्छे से जानते हैं वो इनोसेंट है एंड उसने बहुत कुछ झेला है। अगर वो विधिक के पास वापस गई तो वो उसे यहाँ से लेकर हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, ऐसे में हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। तो फिर दुआ करो कि प्लान ए और बी में से कोई सा भी प्लान सक्सेसफुल हो जाए, मिस्टर दत्त ने इतना ही कहा और उठकर अपने केबिन में जाने लगे। अमन मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, वो दरवाजे के पास पहुंचकर बोले। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका चुपचाप उनके पीछे जाने लगा। कुछ ही मिनटों में मिस्टर दत्त अमन के साथ अपने केबिन में थे। तुम अब तक उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर तुम्हें मेरे थर्ड प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने वहाँ कुछ क्यों नहीं कहा? मिस्टर दत्त को भी अमन के बर्ताव से हैरानी हो रही थी। क्योंकि मैं उसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा, अमन ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मिस्टर दत्त के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो आगे कुछ कह पाते उससे पहले ऑफिस के इंटरकॉम पर एक कॉल आया। उन्होंने कॉल पिक किया। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो, मिस्टर दत्त ने जवाब दिया। मुझे चलना चाहिए। किसी और के वहाँ आने के बाद सुनकर अमन उठने को हुआ, तभी मिस्टर दत्त बोले, नहीं तुम रुको, बाहर जो भी इंसान आ रहा है वो वही है जो रॉबिन को उससे भी ज्यादा अच्छे से जानता है। उनके आने से ही पहले बता दूं कि वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन उनकी एक गलती के चलते उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई और आगे क्या हुआ होगा ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी। फिर तो कहना पड़ेगा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। अगर उस दिन आंशी ने शादी के लिए हाँ नहीं कही होती तो शायद मेरा भी यही हाल होता, अमन ने बताया। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी एक शख्स की वहाँ एंट्री हुई। उन्हें देखकर मिस्टर दत्त खड़े हो गए और उन्हें सल्यूट किया। गुड इवनिंग सर, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई, मिस्टर दत्त ने उन्हें हल्की मुस्कुराहट दी। वो उनसे वापस मिलकर खुश थे। तुम्हें मुझसे सल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है दत्त, अब मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ अमन को जानी पहचानी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने आंशी के पापा मिस्टर शिव जिंदल खड़े थे।